इन्हीं लोगों में कुछ और थे। 11वें पारे का आगाज है, 11वां पारा, या तजिरू नहीं इलैकुम इज़ारा जा तुम, जब तुम पलट कर इनके पास पहुंचोगे तो तरह तरह के उजर पेश करेंगे, मगर तुम इनसे साफ कह देना तुम बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अबर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा। हाईलाइट कीजिएगा, अब देखेगा नेक्स्ट टाइम मौका आएगा तो क्या करोगे। बातों की फिक्र नहीं करो, ये बताओ कि कल आने वाले वक्त के लिए तुमने क्या सोच रखा है। फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे, जो खुले और छुपे सबको जानने वाला है, वो तुमको बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नजर करो, तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर कर ही लो, क्योंकि ये गंदगी है। इनका असली मुकाम जहन्नम है, जिनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह ऐसे फासिक लोगों से हरगिज राजी नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है कि नबी भी अपनी मर्जी से किसी को एग्जाम्प्ट नहीं करार दे सकते। यहां से अब आखिर तक जो हिस्सा है ये गजवे तबूक से वापसी पे। आप सोच रहे होंगे कि गजवे तबूक में हुआ क्या। शुरू में तुमने बात करी, निकले, बड़ी मुश्किल थी, निकल गए, चल पड़े, कुछ पीछे रहे, कुछ निकले, लेकिन चलते गए। लेकिन हुआ क्या, जब मुसलमान तकरीबन एक महीने के सफर के बाद वहां पहुंचे, हिरकल को पीछे से खबरें आ चुकी थी कि अल्लाह के नबी तो एक लश्कर लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा रोब डाल दिया कि सब भाग गए, सामना ही नहीं किया, दे कुडंट फेस देम। अल्लाह के नबी एक महीना तक वहां बैठे रहे, आओ बात करो, आगे करो, मारो उनको, कोई आया ही नहीं, एक गोली नहीं चली, एक तीर नहीं टूटा, एक तलवार नहीं टूटी, और मुसलमान वहां से बहुत सारा माल गनीमत जो दुश्मन ऐसे ही छोड़ छोड़ के भाग गए थे लेकर आए, एक बंदा नहीं मारा गया तबुक में। कभी कभी अल्लाह सिर्फ ये देखता है कि तुम निकलना चाहते हो कि नहीं। अल्लाह को क्या लगे, मैं और आप कभी निकल भी पड़ते हैं तो होता क्या, मजा ही आता है, अच्छा ही होता है। सिर्फ मुश्किल निकलने वक्त होती है, आप आजमा के देखें, जिस वक्त आपने डिसीजन बनाना होता है वो मुश्किल है। जो ही हम पीछे रह जाते हैं किसी काम से गिल शुरू होता है, चली जाती, हो ही जाती, कर ही लेती काम, ओके कर ही देती, क्या फर्क था, दुनिया के काम तो होते रहेंगे, सेहत तो चलती रहेगी, बीमारी तो टली जानी थी, सर दर्द तो वहां जाके ठीक होता है। जब वापस गए तो धाक छा गई। तबूक की फतह मुसलमानों के लिए ऐसी फतह साबित हुई कि जिसने अरब से बाहर मुसलमानों की धाक बिठा दी। जैसे कोई टीम मैच जीत के आती है ना, तो सारी दुनिया में उसके हवाएं चलती हैं कि ये बड़ी अच्छी टीम है। यही हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस सफर की मुश्किलें सही, लेकिन अल्लाह वहां से ले आया। अब जब वापस आए तो वो लोग जो पीछे रह गए थे निफाक के मारे हुए, अब वो सच्चे झूठे बहाने, क्या करें, दिल बड़ा करता है, प्यार बड़ा है आपसे, ये वो, अल्लाह कहते हैं इनकी बातें ना सुनो, ये गंदगी है, इनको छोड़ दो इधर ही। ये बदवी अरब कुफर और निफाक में ज्यादा सख्त हैं, और इनके मामले में समर के इम्कान ज्यादा है कि इस दीन की हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हकीम और दाना है। इन बदवियों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करें तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती की चट्टी समझते हैं, यानी बोझ समझ के देते हैं। यहाँ पता क्या चलता है कि इल्म की कमी दिल को सख्त कर देती है, और हालात की सख्ती और जानवरों में रहने की वजह से इल्म का शौक कम हो जाता है। ला इल्मी भी ला यशरून वाले निफाक को पैदा करती है। तो ऐसे लोग खुशी से खर्च नहीं करते थे, अगर कोई मांग भी ले कुछ तो ऐसे बोझ के साथ खर्च करते थे, ग्राहियत से खर्च करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और तुम्हारे हक में जमाने की गर्दिश का इंतजार करते हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो अपनी गर्दन से इस निजाम इताद का कलादा उतार फेंके जिसमें तुमने इनको कस दिया। मुनाफिक पीछे बैठ के रास्ता देख रहे थे कि कब खबर आती है कि अल्लाह के नबी अपने लश्कर समेत मार दिए गए। पीछे खबरों के इंतजार में वो टीवी चैनल खोल के बैठे हुए थे, अब जरा न्यूज सुनते हैं। अफसोस की बात है, आज भी उम्मत मुस्लिमा में अक्सरियत को न्यूज सुनने का बहुत शौक है। वो कहते हैं खबरें सुनते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो चलिए साथ चलते। कहते नहीं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह सुबहान तला यही बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग आपके बारे में बुरी बुरी खबरों का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बुराई का चक्कर खुद इन्हीं पर मुसलत है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है, और इन्हीं बदवियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह रोजे आखरत पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ भी खर्च करते हैं उसको अल्लाह का तकर्रुब और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ, वो जरूर इनके लिए कुर्ब का जरिया है, और अल्लाह जरूर इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह ताला दलगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ पे अब उन सब की बात करके आगे दूसरे लोग हैं। जंग का किस्सा पूरा हुआ, लेकिन अब इसके नतीजे में जो हकीकत सामने आई उसका तस्करा फरमाया وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبئی کہا اور وہ جو اس کے بعد آئے راست بازی میں ان کے پیچھے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی ہے عظیم الشان کامیابی یہاں سمجھ لیجیے دعا کیجیے اللہ میں السابقون میں کر دے آگے وہ نکلے گا جو پہلے سے تیار ہوگا رائٹ اور رانگ کسی ریس کو ذہن میں لائیے جو مینٹلی پریپیئر ہوگا موقع ملتے ہی نکل پڑے گا نیکیوں کے کام میں سابقون الاولون وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار کر کے بستہ بیگ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں چابیاں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں پہلے سے چیک کرتے رہتے ہیں ٹائم کب ہے کب ہے وہ وقت ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے جیسے بعض لوگ دنیا کے لیے سابقون الاولون ہیں چیک کرتے رہتے ہیں سیل کب لگ رہی ہے فلاں 30% پہ کیا یہ نومبر میں ایک آئے گا بلیک فرائیڈے لوگ آدھی رات کو تہجد میں کھڑے ہو نہ ہو وہ وہاں جا کے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈور کھلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اور یہی خبریں پاکستانیوں کی کسی نے سنائی کہ جب لون کی سیل لگتی ہے تو وہ کچھ اتنے کو پرنٹ کو کچھ اسپیشل پرائز پہ کرتے ہیں عورتیں بھیک مانگتی ہوئی دکھتی ہیں کسی نے مجھے شیئر کیا کہ عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں خدا کے لیے یہ مجھے دے دو کسی اور کے سے پہلے مجھے دے دو تو یہ ہے نا سابقون الاولون دیکھیے دو ہی مجاہد ہیں یا دنیا کے مجاہد یا دین کے بنتے ہیں تو کھل کے کام کریں اور جو دنیا کا جہاد کرتا ہے پھر کھل کے دنیا کمائے پھر موج کریں مستی کریں انجام سب کو پتا ہے کس کا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے دنیا میں کہتے لو میں پرانا پرنٹ پہنوں پچھلے سال کا پرنٹ پہنوں یہ نئے سال کا یہ اگلے سال کا یہ بھی ایک پرابلم بن گیا کہ آپ کس سال کے لون پہنتے ہیں اور کس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں کدھر ہو اور دین میں کدھر ہو کیا یہاں سب سے آخر میں وہاں کہتے ہیں سیل شروع کب ہوگی یہاں کہتے ہیں قرآن ختم کب ہوگا اس دن ضرور بلائیے گا دعا کریں گے دعا میں شامل ہوں گے ہمیں ختم کا شوق ہے مومن کو سیل شروع ہونے کا ہے اللہ کہتے ہیں سابقون الاولون کون ہے جو انتظار نہیں کرتے کہ رواج بن جائے فیشن بن جائے سب کر لیں فرسٹ امنگ اس دا فرسٹ کہ سب سے پہلوں میں پہلا رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتے کیلکولیٹنگ مائنڈس نہیں ہوتے ان کے ایفس اینڈ بٹس میں نہیں ہوتے یہ چل پڑتے ہیں یہ ہیڈ سٹارٹ لیتے ہیں یہ نوکریاں چھوڑتے ہیں دین سیکھنے کے لیے یہ سکولوں سے چھٹیاں لیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے یہ دنیا کے چند فائدے چھوڑتے ہیں سیکھنے کے لیے یہ اپنی خواہشوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے دشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے یہ ہے سابقون الاولون جو ہی موقع ملے دوڑ جانے والے مہاجرین کون ہیں جنہوں نے جابس چھوڑی بری عادات چھوڑی اور انصار کون ہیں جن کے ہاتھ لے رہے ہیں آپ دیکھیے اتنی تکلیفیں تھیں مکہ میں اسلام قبول کرنے پر اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اسلام چھوڑ دو بلال کو کبھی مشورہ نہیں دیا کہ بلال کیوں مرتا اے بلال یہ تو خودکشی ہوگی اسلام چھوڑ دے اللہ کو تیرے دل کا پتہ ہے حالات اچھے ہوں گے تو کر لینا ایک ایسا میسج نہیں آج ہم اپنے دوستوں کو کیا کہتے ہیں چلو جب تمہارے حالات اچھے ہوں گے پھر کر لینا کبھی اپنے کسی ایسے ساتھی سے نیکی کے کسی کام کا مشورہ نہ کریں جو وہ خود نہ کر رہا ہو کئی لوگ کورسز لے رہے ہوتے ہیں دوستوں سے مشورہ کیا جو خود نہیں لے رہے وہ آپ کو کیسے لینے دیں گے ایک ایسی بات کر دیں گے جس کے بعد آپ خود پیچھے ہو جائیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرے بھاگنے والا بنا دے نیکیوں سے نہ بھاگیں نیکیوں کی طرف بھاگیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو فرماتے ہیں تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں دیکھیں نبی کے دور میں یہ تھا تو آج کیا حالات ہوں گے اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہوشیار ہو گئے بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنا نفاق چھپا لیتے ہیں بعض لوگ واقعی ایسے ہیں نیکنے میں بہت نیکی ثابت کرتے ہیں دلوں میں نفاق ہو سکتا ہے تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے اب ایک دوسرا گروہ جس کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے ان کے عمل ملے جلے ہیں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد بھی ہیں بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اب سورۃ توبہ دیکھیے بار بار توبہ کا ذکر ہے और इनकी खैरात को कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, और अल्लाह और इसका रसूल भी और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे। जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें भी बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे। यहां देखिए एक अगला फिर ग्रुप आ रहा है, तो समझ लीजिए आखरूना की बात क्या है। एक होते मुनाफिक और एक होते गुनाहगार मोमिन, दोनों में बहुत फर्क है। बाद जब हम जब मुनाफिकों की बातें सुनते हैं तो हम परेशान होते हैं कि शायद हम सब मुनाफिक हैं। तो देखिए, अपने ऊपर तो हमेशा घड़ी नजर रखे, सहाबा अपने आप को मुनाफिक समझते थे। 80 के करीब सहाबा, जिनमें सहाबियात भी थी, जिनको खुद पर खदशा था कि हम मुनाफिक हैं। और यहां तक रिवायात में आता है कि निफाक से खुद को पाक मुनाफिक के सिवा और कोई नहीं समझता। यानी जितना सच्चा खरा ईमान होगा उतना आप खुद को मुनाफिक समझेंगे। लेकिन दोनों में फर्क है, गुनाहगार मोमिन और निफाक वाले में। मुनाफिक को इस्लाम से बुगज होता है, दुश्मनों से मिला होता है, इस्लाम का जवाल चाहता है। गुनाहगार मोमिन कौन है? पहली बात, सुस्त होता है, लेजी लेजी वो है। दूसरी बात है, टालता रहता है नेकियों को, जरा कर लूं, अच्छा अभी पढ़ती हूँ नमाज, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, ख्वाहिश परस्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की यहाँ बात की कि शुरू में थोड़ा पीछे रहे, बाद में मिल गए। खलत अमलन सालेहन को देख लीजिए, तो मेरे और आप सबका यही तो नहीं हालात? नेकी का मौका भी कोई नहीं छोड़ते और गुना भी कोई नहीं छोड़ते। रमजान सारा नेकियों में और ईद की सारी पार्टियां अपनी मर्जी की चलेंगी। तो ऐसे लोग फिर वो खिचड़ी सी पकाई हुई है इधर ना उधर के। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसे लोगों को तुम क्या कह दो कि देखो अल्लाह जानता है। इस रमजान में अगर आप देखिए कि अगर हम आखरून थे, अगले साल साबिकून बन जाएंगे। तीन गिरोह अभी तक हमारे सामने आए हैं, साबिकून अलवलून फौरन निकले, फौरन रेस शुरू कर दी, आखरून थोड़ा डिले किया, डिली डैली करते करते फिर निकल गए। और अब एक तीसरा गिरोह है जिनके ऊपर ये सूरत, जिसका नाम सूरत तौबा है, और वो कौन है? मुरजौन। आइए इनको देखते हैं। वाखरून मुरजौन अली अम्रिल्लाह, कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला भी अल्लाह के हुक्म पर, चाहे इनको सजा दे और चाहे इन पर नए सिरे से मेहरबान हो जाए। अल्लाह सबको जानता और हकीम है। ये कौन लोग, इनका जिक्र आगे आएगा, यहाँ बस थोड़ा सा जिक्र कर दिया। बीच में फिर एक मुनाफिकाना रविश का जिक्र है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई इस गरज से कि इस दावत हक को नुकसान पहुंचाए, जो अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डाले, और इस बजाहर इबादत गाह को इस शख्स के लिए कमीन गाह बनाए जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पेकार हो चुका। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी और चीज का नहीं था, मगर अल्लाह गवाह है वो कतई झूठे हैं। तुम हर किसी इमारत में खड़े न होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई, वही इसके लिए ज्यादा मौसू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है। मस्जिद दरार की बात है, थोड़ा सा समझिए कि मस्जिद नबवी के तौर पर मस्जिद नबवी मौजूद थी जो मदीना और उसके इर्द गिर्द की सारी जरूरत को पूरा करती थी। अभी इतने लोग भी नहीं थे। कुबा में कुबा की मस्जिद थी जहां कुछ मुस्लिम थे, मदीना में मस्जिद नबी थी। ये मस्जिद अपनी जगह को की जरूरियात पूरी कर रही थी, लेकिन मुनाफिक किस्म के लोग जिनको एक पॉइंट चाहिए था जहां बैठकर इस्लाम और नबी के खिलाफ साजिशें करें, तो अब वो कोई अड्डा तो बना नहीं सकते थे, कोई सेंटर अपना बनाते हो अगेंस्ट इस्लाम सेंटर, तो मदीना में कौन उनको देते जगह। उन्होंने एक साजिश की कि हम मस्जिद के नाम पर एक बिल्डिंग लेते हैं और कह देंगे मस्जिद है। करेंगे क्या कि वहां बैठ के प्लानिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। अबू आमिर फासिक एक शख्स था जो दूसरे मुल्क से आता था, उसको बैठने की जगह मिल जाएगी। और कुछ दूसरी वजह यह कि जरा मुसलमानों के कुछ लोगों को काटते हैं, मस्जिद नबी की बजाय इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें। अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मिलकर, और ये सारे लोगों की कहानी थी, अल्लाह के नबी के पास मैसेज आया एक नई मस्जिद आ रही है, आप इफ्तिताह करते हैं। देखिए आपका दिल कितना खुला था, ये नहीं कहा तू मेरे खिलाफ बना रहे हो कुछ नहीं, बस ये कह दिया कि अभी बहुत मसरूफ है, हम तबूक के लिए जा रहे हैं, वापसी पे बना देंगे। अल्लाह के नबी वापस आए तो आयतें नाजिल हो गई कि बिल्कुल नमाज नहीं पढ़नी। क्या पता चला कि जब एक मस्जिद किसी जगह की जरूरियात पूरी कर रही है तो तकाबुल पे और फिर कवारियत के नाम पे कि इनकी है तो हमारी भी हो, ऐसी मस्जिदें मस्जिद तरार है। इसीलिए अगली आयतों में यही, और आज उम्मत मुस्लिमा के लिए यही मैसेज है कि मस्जिदें बनाने से ज्यादा स्कूल बनाए। मस्जिदें तो माशाल्लाह हर थोड़े मील पे बनती हैं और चलती हैं, और यहाँ तो शहर बड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मस्जिदें भरी भी लगती हैं। दुनिया के ऐसे खित्ते भी मैं देख के आ चुकी हूँ कि जहाँ वॉकिंग पे 8-8 मस्जिदें हैं। भाई इसकी क्या जरूरत थी? हमारे मसलक की, ये उस ग्रोह की है, ये हमारे गाँव की है, ये अरबियों की है, ये बंगालियों की है, ये वहाबियों की है, ये सुनियों की है, ये शियाओं की है, और इतने रंग की मस्जिद, और एक स्कूल भी नहीं है वहां पर ढंग का कि जहां बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तो मस्जिद तो आप राह जाते भी मस्जिद बन जाएगी, पूरी जमीन मस्जिद है। इस वक्त जरूरत है दीन के इदारे कायम करने की, अल्लाह ताला हमें इसमें मुआविन और मददगार बना दे। इसीलिए अब उसी मौजू को अल्लाह ताला आगे लेके चलते हैं। अफमनस्सा बुनियान हो ला तकवा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो, या जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसुबात खगर पर उठाई और वो इसे लेकर सीधी जहन्नुम में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। ये मस्जिद जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिससे निकलने की अब कोई सूरत नहीं, सिवाय इसके कि अब इनके दिल ही पारा पारा हो जाए। अल्लाह नहायत बाखबर और हकीम और दाना है। क्या पता चला, बेबुनियाद इमारतें कायम नहीं रहती। इखलास की बुनियाद पर दीन का जो काम करेंगे वो फलेगा भी और फूलेगा भी। जहां तकाबुल होगा, फिर कवारियत होगी, दूसरों को काटना होगा, वो बिलाखिर खत्म हो जाएगा। कटी हुई बेल की तरह वो काम खत्म हो जाता है। तो इखलास आपका और अल्लाह का राज है, इसको लेने की जरूरत है। अब अगली आयत जो इस पारे की आयत तदब्बुर है, बहुत खूबसूरत आयत है। दुआ करते हैं हम इसका हक अदा कर सकें। इस आयत को अपने अपने और अल्लाह के बीच में रखना है। आपके साथ अल्लाह ताला एक डील करना चाहते हैं, जन्नत का सौदा आपके नाम। कैसे? इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। आप सोल्ड वन है, आपके दिल जिस्म दिमाग पर सोल्ड का बटन लगा हुआ है, इसलिए अब आप किसी और के हाथों में नहीं बिक सकते, ना नफ्स के, ना मुआशरे के, ना माल के, ना जॉब के, ना दुनिया के फायदों के। क्या खूबियां हैं ऐसे लोगों की? नंबर एक, वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता वादा है, तौरात और इंजील और कुरान में, दुनिया की तीन सबसे ऑथेंटिक किताबों का रेफरेंस दे दिया अल्लाह ने। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद का पूरा करने वाला हो? बस क्या करो, फस तब शुरू भी बेही कुमुल लजीबा या तुम भी वजाली का हुआ अल्फौजुल अज़ीम। बस खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया, बस यही बड़ी कामयाबी है। कुछ और इनकी खूबियां, अत्ताइबून आबिदून अलहामिदून अस्साइहून। अल्लाह अकबर। उसकी बंदगी बजा लाने वाले, इसकी तारीफ के गुण गाने वाले, इसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले और इसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, इस शान के होते हैं वो लोग, वो मोमिन जो अल्लाह से बैह का ये मामला तय करते हैं। वबशिरिल मोमिनीन, और ए नबी मोमिनों को खुशखबरी दे दो। बड़ी तवील आयात आपने मैंने सुनी, तो आप जरा इसको एक मिसाल से समझ लीजिएगा। वैसे इसकी तफसीर इंशाल्लाह हम आपको घर में भेजेंगे अल्लाह ने चाहा। बहुत प्यारी आयत है, इस पे लेक्चर भी अलग से मौजूद है कि मोमिन बिकावा होता है। और इसी तरह से आप इमेजिन कीजिए, आपके पास आपका सेल फोन है, आप सोचती है मैं इसको बेच दूं, आप निकलते हैं, कहते चले देखती हूँ कौन इसकी कीमत लगाता है। आप घर से बाहर निकले, कोई बाहर ड्रा चलता ही मिल गया, कहा क्या कर रहे हो, कहा ये सेल फोन बेचना है, कितने का बेचेगा? वो कहते हैं मैं तुम्हें इसका $100 दे दूंगा। आप कहते हैं $100 देता, चलो कुछ तो मिल रहा है तो ये 500-600 का, लेकिन 100 मिल रहा है ले लो। आप 100 देकर जेब में डालकर लेके आ जाते हैं, एक पर्सन वो है। दूसरी सूरत ये कि आप कहते नहीं 100 का तो मैं नहीं देती, 500 का तो कम से कम था, कुछ तो मिले। आप थोड़ा और आगे जाते हैं, दो चार गलियों के बाद एक मार्केट है, वहां खड़े होते हैं, कुछ और भी डर जाते हैं। एक बंदा आता है, कहते 200 का ले लेता हूँ, आप कहते हैं उसको भी दे दीजिए। अब आप 200 देकर लेकर आ गए, आप दो ये दूसरे में, दूसरी सूरत कहते मैं 200 का क्यों बेचूं, है ही 500 का और मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, नहीं लेट मी थिंक मोर, आई देखती हूँ और क्या आता है। आप थोड़ी दूर और गए, जब आगे गए तो उसको कोई ऐसा पर्सन मिल गया कि जिसकी मजबूरी यह है कि वो ब्रांड न्यू कंपनी से नहीं खरीद सकता, उसको किसी और के नाम पे इश्यू किया वही लेना है। वो कहता है कि मैं आपसे ये नया बिल्कुल है, कितना चला कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में 500 रखता है और आपका यूज फोन जो थोड़ा सा यूज है वो खरीद के ले जाता है। कौन सा ताजिर बेहतर है, पहला दूसरा के तीसरा? तीसरा, सब्र वाला। अब मैं और आप अपने नफ्स को लेकर इस दुनिया के बाजार में निकलते हैं, पहली बोली हमसे कौन लगाता है? हमारा नफ्स लगाता है। कुछ लोग खुद के हाथों में खुद बिक जाते हैं, सेल्फ प्लीजर लोग, सुस्त क्रिमिनल, शराबी, कबाबी, जो इस दुनिया में आके ना खुद से फायदा ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। वो कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती जिंदगी फन गर्लग्रम, क्रिमिनल्स भी बन जाएंगे, ड्रग्स एडिक्टेड भी होंगे। ये वो फर्स्ट मिसाल है कि इन्होंने अपने आप को बड़ा सस्ता बेच दिया। कुछ लोग अपने आप से तो नहीं बेचते, खुद तो बहुत मत कनेंगे, आगे निकले थोड़ी दूर गए, दुनिया को बेच के आ जाते हैं। पीपल प्लीजर, पहले सेल्फ प्लीजर, दूसरे पीपल प्लीजर। वो कहते हैं वो करो जो लोग चाहते हैं, लोगों की नजरों में बनो, लोग 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 उनका मसला है, वो आधी कीमत देकर अपने आप को ले आए। दो, तीसरा जो सबसे अकलमंद, जिसका जिक्र अल्लाह ने इधर किया, ना अपने हाथों बिकता है ना लोगों के हाथों बिकता है, बल्कि वो अल्लाह प्लीजर है। उसको पता है मेरे इस जिस्म की कदर कौन करेगा। कटा पटा जिस्म है, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, खून निकला हुआ है जख्म लगे हुए, और अल्लाह उसकी ऐसी प्यारी कीमत देता है कि अल्लाह उसको मुर्दा नहीं करता। तो जो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफे में है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम पीपल प्लीजर हो जाए, अपने कामों को अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए, और अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। फिर आगे फरमाया, मा कान लि नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन, नबी को और इन लोगों को जो ईमान लाए ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मग़फ़रत की दुआ करें। इतना सख्त शक लगाया अल्लाह ने, काफिर के लिए जिंदगी भर दुआ कर सकता है इंसान क्या? अल्लाह इसको हिदायत दे, मे अल्लाह गाइड यू, मे अल्लाह मर्सी अपॉन यू, दिस दिस। इधर कुफर पे मर गया, आप ये नहीं कह सकते अल्लाह इसको जन्नत दे। क्यों? उसने जन्नत मांगी नहीं, आप उसको क्यों जन्नत में भेज रहे हैं? वो तो जाना ही नहीं चाहता। फरमाया, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आज देखिए जो रिवर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो इन आयतों पर रोते हैं, वो कहते हैं हम अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआ मगफरत की थी वो तो इस वादे की वजह से थी जो उन्होंने अपने बाप से की थी, मगर जब उन पर ये बात खुल गई कि इनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गए। हक ये कि इब्राहिम बड़े रकीकुल कल्ब, खुदा तर्स और बुर्दबार इंसान थे। इमेजिन कीजिए इब्राहिम के दुख को, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मोमिन 8 मुद्दों से निकालकर अपने आप को रब के रास्तों में लेकर आता है। आज हम कहते हैं दिल ना तोड़ो, रिश्तेदारी ना तोड़ो, हार्ट ब्रेकिंग ना बनो, ये है वो है। क्या इब्राहिम के इस मामले से बाप नाराज नहीं हुए होंगे? तो याद रखिए, अल्लाह को नाराज करके आप सारी दुनिया को भी खुश कर लेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। कल हमने एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस किया, आप में से शायद कोई था, हमने कल अल्लाह की मोहब्बत पे बात की, आपको सुनवाएंगे। मैं ऑनलाइन से भी चाहूंगी कि इस लेक्चर को आपके साथ शेयर करें। ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट में हमने अल्लाह की मोहब्बत की एक दुआ सीखी और उसी में हुब्बे इलाही पे बात की। ये सेव्ड है हुब्बे इलाही के नाम पे, इसका लिंक आप दें और सुने भी तब जब रोजा खुलने वाला हो, इफ्तारी के वक्त जब दिल अंदर से डूबा हो, उस वक्त अल्लाह की बात सुनना, इतना अच्छा लगा। उसमें भी यही बात हमने सीखी थी कि जब अल्लाह से मोहब्बत की है तो फिर दूसरों की मोहब्बतों को उसके अंदर कर दीजिए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाए, अल्लाह का तरीका नहीं कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबतला कर दे जब तक कि इन्हें साफ साफ ना बता दे कि इन्हें किन चीजों से बचना है। क्या मुझे और आपको हिदायत मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ता मिल गया। अब मैं और आप अगर भटकेंगे ना तो ये हमारी अपनी चॉइस होगी। अल्लाह कहते हैं मैंने ओपन बुक टेस्ट दे दिया तुम्हें, सब पता है क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, नहीं करोगे जिधर भी जाओगे अपनी फिक्र खुद कर लो। दर हकीकत अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, और ये भी वाकया है कि अल्लाह ही के कब्जे में जमीन और आसमान की सल्तनत है, इसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं जो अल्लाह से तुमको बचा सके।